This is an ABP Life podcast.
एक आईएएस बनने के लिए स्टूडेंट न जाने क्या क्या जतन करता है. यूपीएससी क्रैक करना, एक आईएएस या आईपीएस या आईआरएस बनना हमारे देश में एक टॉप क्लास ऑफिसर माना जाता है, बहुत मुश्किल माना जाता है. और जब इस तरह से खबरें आती हैं कि यूपीएससी क्रैक किया है और सिलेक्शन के लिए गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, तो निश्चय ही गलत नहीं होगा ये कहना कि स्टूडेंट्स का मनोबल टूटता है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो सपने देखते हैं कि एक दिन हम बड़े होकर आईएएस, आईआरएस या आईपीएस ऐसी टॉप रैंक्स पर जाएंगे, ऐसी टॉप पोजीशंस पर जाएंगे. और इसीलिए बेहद जरूरी हो जाता है आज इस विषय पर बात करना. मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट. यह है FII, जहां हम रोजाना किसी न किसी टॉपिक पर डिटेल में विद द एक्सपर्ट्स हम डिस्कशन करते हैं. हमारे साथ में आज जुड़े हैं एक्स आईआरएस ऑफिसर विनोद कुमार सिंह. वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर.
थैंक यू मानसी
जी. सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सभी को एक बार सिचुएशन बता दूं, आखिर चल क्या रहा है हमारे देश में और क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है. पूजा खेड़कर का नाम कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है. ये महाराष्ट्र कैडर में आईएएस ऑफिसर हैं, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हैं, अगर मैं पूरी डिटेल बताऊं. और इन पर ये इल्जाम लगा है कि इन्होंने डिजिबिलिटी कोटे का गलत इस्तेमाल करके अपना सिलेक्शन करवाया है. ये मेडिकल के लिए भी हाजिर नहीं हुई थी यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस करने के बाद. इनकी नियुक्ति, इनकी पहली पोस्टिंग पुणे में कलेक्टर ऑफिस में हुई, जहां इन पर कई तरह के आरोप लगे, जिनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही सरकारी आवास, स्टाफ कार, ऑफिस में अलग केबिन की मांगे रखी. इन्होंने अपनी पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती, महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाकर अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया. इन्होंने एक डीसीपी रैंक के ऑफिसर पर दबाव बनाया उस इंसान को छोड़ने के लिए जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था और वो एक ट्रांसपोर्टर था. इन पर ये आरोप है कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है आईएएस बनने के लिए. इन्होंने यूपीएससी फॉर्म में खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से होने का दावा किया. इसके साथ ही इनकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो इन्होंने गलत बताई थी, और ये करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है, इनकी करीब 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है. इसके अलावा इन्होंने विकलांगता श्रेणी के तहत यूपीएससी फॉर्म भरा था, दावा किया था कि ये 40% दृष्टि बाधित है और किसी मानसिक बीमारी से भी जूझ रही है, लेकिन मेडिकल के लिए जो बुलाया गया तो ये नहीं गए. ये आरोप तो इन पर लगे हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में है. इसी के साथ आज एक और खबर आई कि एक्स आईएएस अभिषेक सिंह, इन्होंने भी विकलांगता के कोटे का गलत इस्तेमाल किया और वो भी आईएएस बने थे. सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे लूंगी, सर बीइंग एन आईआरएस, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन है जब इस तरह की खबरें आई है?
मेरे समझ से इसमें दो इशू. एक तो सिलेक्शन के समय में क्राइटेरिया को स्ट्रिक्ट नहीं रखना और बिना सर्टिफिकेट की या सर्टिफिकेट में रिलैक्सेशन के आधार पर सिलेक्शन होना. अगर विकलांगता के लिए गुंजाइश है तो विकलांग की भी जो क्राइटेरिया है उसको स्ट्रिक्टली स्क्रूटनी किया जाता है, उसमें जंप नहीं हो जाता.
तो
पहला क्राइटेरिया है इनकम लिमिट में रिलैक्सेशन. ये हमने नोट किया है काफी लोगों ने कि जो इनकम क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को, उसको बड़ा ही रिलैक्सेशन में लोग देखते हैं. जो फॉर्चुनर कार रखता है जिसका फादर, वो उसकी बेटी जो है आईएएस बन जाती है और उसका उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है आराम से एसडीएम ऑफिस. तो ये जो क्राइटेरिया है कि सर्टिफिकेट आराम से मिल जाना, ये है. दूसरा है कि यूपीएससी का जो स्ट्रिक्टनेस है वो बियॉन्ड डाउट है. यूपीएससी में एक की जगह दूसरे को अपीयर होना, ये तो कोई संभव नहीं लगता है. ये तो कोई जांच आयोग या कोई इन्वेस्टिगेशन होगा वही बता सकता है. तो लेकिन जो ऑडी कार रखती हो,
17 करोड़
की प्रॉपर्टी हो, उसको बिना जांचे हुए सर्टिफिकेट मिल जाना, ये जांच का विषय है. दूसरा है कि जो क्राइटेरिया है, जैसे कि 40% दृष्टि बाधित थी, तो अब दृष्टि बाधित जो है उसके काम को कितना एफिशिएंसी को कितना प्रभावित करता है, उसमें मेरे हिसाब से जो यूपीएससी में हम लोगों ने टेस्ट किया है उसमें मेडिकल में तो कोई छूट नहीं है। मुझे अभी तक याद है कि हमारा एक बार सिलेक्शन हो चुका था, दूसरी बार जब फिर इंटरव्यू दिया और मेडिकल हुआ तो डॉक्टर ने आई टेस्ट नहीं किया था, बाकी सारा मेडिकल किया और आई टेस्ट में बोला कि आप लोगों का हो गया, आप लोग जाइए। इसके बाद हमारा एड्रेस भी नहीं था वहाँ, लेकिन अगले दिन देखे कि हमें ढूंढते हुए कोई पहुंचा और बोला कि आई टेस्ट आपका होना जरूरी है, आई टेस्ट छूट गया था। तो हमने तो कहा कि टेस्ट तो बोला था कि आपका लास्ट ईयर यूपीएससी के लिए हो चुका है तो आई टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो आप नहीं नहीं आप चलिए, नहीं तो वो डॉक्टर और उसकी जो है नौकरी चली जाएगी। तो हम लोग गए और बिल्कुल फेयर होता है, कोई पैसे का कोई इन्फ्लुएंस का कोई भी लेना देना नहीं है, यूपीएससी की इतनी प्रतियोगिता है, तो उसमें छूट देना या किसी दूसरे को बैठना ये तो मुझे डाउटफुल, आई कांट बिलीव। लेकिन जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर में होते हुए इजीली मिल जाना बिना किसी जांच का, पहला विषय है। दूसरा विषय है कि अगर उनमें योग्यता नहीं थी उसकी जगह कोई बैठा हो, मेरी समझ से तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो ये सोचने का चिंता का विषय है। और थर्ड क्राइटेरिया है कि उनका जो आचरण है वो भी सिविल सर्वेंट की तरह नहीं था, क्योंकि बिल्कुल छोटे पोस्ट पर क्लर्क का काम है वो करना पड़ता है, एक पुलिस सर्विस में एक सिपाही का काम करना पड़ता है, एक एक चीज जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझना पड़ता है। उस समय सेपरेट केबिन मांग करना, उस समय प्रिविलेज का मांग करना, गाड़ी में लाल बत्ती लगाना ये तो बड़ा शौक है, लाल बत्ती लगाने का शौक पर्सनल गाड़ियों में तो बड़े ही पैमाने पर है। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आचरण अगर सही होता तो ठीक था। अभी आज के न्यूज में आया कि उनकी माँ जो है वो पिस्टल लहराई किसी पर,
उनकी माँ जो है वो सरपंच है दरअसल, और वो इस तरह से हाथ में पिस्टल लेकर के उनका वीडियो काफी वायरल हुआ।
तो एनी हाउ माँ के अपराध के लिए बच्चों को दंडित नहीं किया जा सकता है, सवाल ये है कि जो आईएएस प्रोबेशनर है उसके आचरण में संदेह पाया गया तो उस गाड़ी को बॉन्ड कर लिया गया है और वो जांच का विषय है। यूपीएससी से सिलेक्टेड है तो इतना इजीली तो नहीं हटाया जाएगा,
अच्छा
उसकी जांच होगी।
तो यानी कि अब क्या हो सकता है उनके साथ, क्योंकि आपने कहा कि यूपीएससी से सिलेक्टेड है इसलिए आसानी से हटाया नहीं जाएगा, अगर आरोप ये सिद्ध हो जाते हैं जांच के बाद तो क्या होगा?
आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसको तब हटाया जा सकता है और उसके लिए जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, उसको अधिकार रहेगा कि कोर्ट में जाए। अगर उसकी जो जांच रिपोर्ट है सही में फ्रॉड है और मिसयूज तो है, उन्होंने पावर का मिसयूज किया या प्रिविलेज का किया, लेकिन कुछ चीजें है जो विश्वास नहीं होता, जैसे कि उसकी जगह कोई और बैठा होगा या सर्टिफिकेट जो है सो नकली करके मैनेज कर देना, तो भारत में तो इस तरह की चीजें जो है सो असंभव नहीं है। क्योंकि हमको जब आरटीएक्स विस्फोट हुआ था देश में तो हमको एक बीएसएफ के बड़े सीनियर ऑफिसर की वाइफ बताई थी कि जो पैसा लेके आरडीएक्स को दबा दिया गया और उसको कहा गया कि ये गोल्ड है, मतलब आरडीएक्स नहीं है, गोल्ड के लालच में कमीशन लेके। तो हमने कहा कि नहीं ऐसा डाउट मत कीजिए, हमारे बीएसएफ के लोग इस तरह नहीं हो सकते। तो बोला कि उसका इतना कम एज में जो है सो रांची में मकान है, दिल्ली में मकान है, चंडीगढ़ में मकान है। तो उसकी वाइफ थी और शी वॉज वेरी अपराइट, तो उसने हमको बताया कि हमारे लोग इस तरह के हैं, हमारा देश वैसे गुलाम नहीं रहा इतने दिन तक, हमारे लोगों में कमजोरी रही है कि पैसे के लिए हम अपने राष्ट्रीय हित का अपने नेशनल इंटरेस्ट का, तो अगर यूपीएससी में ऐसा हुआ है ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है, ये बड़ा चिंता का विषय है।
मैं आपसे अगला सवाल जो लेना चाहूंगी वो यही, क्योंकि हम ये समझना चाहेंगे कि जो यूपीएससी सीएससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रिजर्वेशन है उसमें क्या क्या कैटेगरीज है, कैसे किसी व्यक्ति को ये मिलता है। जहां मैंने जब कैटेगरीज पढ़ी तो मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा कि ये भी होता है वहां पर, तो इन सब पहलुओं को मैं आपसे जरूर से समझना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति को कैसे मिलता है, किस बेसिस पर मिलता है।
देखिए सिविल सर्विस तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ पर मिलता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है उसमें मेरे हिसाब से ये डॉक्टर करता है, मेडिकल का फील्ड है तो उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर इस हद तक है कि ऑफिसर किसी को इन्फ्लुएंस या इम्प्रेस नहीं कर सके, किसी चीजों को समझा नहीं सके, तो वो तो फिर ऑफिसर होने की फिट नहीं है।
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से मतलब क्या है, क्या क्या चीज टेस्ट की जाती है?
कि इंटेलेक्चुअली किसी चीज को समझ सकते हैं कि नहीं, कोई लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, अगर एक्सप्लेन करना आएगा, जब समझना आएगा तभी इम्प्लीमेंट करना होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको समझना जरूरी है. अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो विद इन द लिमिट हो, इतना लिमिट में हो कि उसके जो डे टू डे फंक्शन है उसको प्रभावित नहीं कर सके.
और
फ्लाइंग कलर से तो जो भी क्राइटेरिया क्या है उसको भी देखना पड़ेगा. वहां तो कोई चूक नहीं रह गई है जिसमें कि मेडिकल मेडिकल एम्बेजलमेंट की गुंजाइश हो, जो 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 मेडिकल साइंस है उसका घोटा, क्योंकि क्राइटेरिया दोनों चीजें हैं. मेडिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है और सब्जेक्टिव.
ओके,
जो चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता टेक्निकली, उसको अगर आप क्राइटेरिया में रखेंगे तो गड़बड़ होगा, वो पैसे लेके करेंगे और तरह का चीजें.
और बाकी अगर आप कैटेगरीज भी बताएं, विकलांगता का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है?
उसके लिए जो नॉर्मल होता है कि जो लोकल एसडीएम है उसके ऑफिस में देते हैं, फिर वो डॉक्टर को सिविल सर्जन को रिफर करते हैं और सिविल सर्जन जो है उसको देते हैं, फिर जांचने के बाद देते हैं. और सर्टिफिकेट की जांच होती है हमारे समझ से यूपीएससी में, तो फिर एम्स में या सफदरजंग हॉस्पिटल में या राम मनोहर लोहिया में उसका मेडिकल होता है, और मेडिकल में फिर से देखा जाता है चीजों को, जो सर्टिफिकेट है उसको फिर से टेस्ट किया जाता है.
और हाल फिलहाल एक्स आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह पर भी ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का उन्होंने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाया था और उसके बेसिस पर वो आईएएस बने थे. हालांकि वो अब पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जिम में डांस करते नजर आ रहे हैं और एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं. एंड पीपल आर क्वेश्चनिंग इन द कमेंट बॉक्स ऑन सोशल मीडिया कि किस तरह से, किस तरह की डिसेबिलिटी से ये जूझ रहे थे और किस तरह से ये उसे ओवरकम करके आईएएस बने हैं. तो इस पर भी आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा.
देखिए, अभिषेक सिंह जी का नाम सुना तो मेरे एक दोस्त हैं आईएएस अभिषेक सिंह, वो काफी सीनियर हैं
जी
और मिनिस्टर के पीएस थे काफी पहले. इसके बाद सो किसी मिनिस्ट्री के साइन जो आईटी मिनिस्ट्री है उसके सीईओ हैं. तो सबसे पहले तो मैंने उनका फोटो देखा तो हम देखें कि जो हमारे दोस्त हैं वो नहीं है, ये जूनियर हैं. और संजोग से नाम उनका भी अभिषेक है, तो उसका मेडिकल फील्ड है ये. और मेडिकल फील्ड में मेरे हिसाब से जब तक डाटा नहीं उपलब्ध होगा, आपको भी नहीं उपलब्ध है, हमें भी नहीं है, यूपीएससी रिलीज नहीं करेगी, तब भी मुश्किल है किसी तरह का कमेंट देना. और अभिषेक सिंह जी का जो भी हुआ हो, डांस करना या एक्सरसाइज करना उनका फ्रीडम है. अगर और गलती नहीं करते तो इस आधार पर सर्विस से नहीं निकाला जाता. मैं लाइट वेन में बता रहा हूँ. तो मेडिकली क्या इशू है वो यूपीएससी रिलीज करे. कोई मेडिकल इशू पर किस तरह का मेडिकल इशू है अगर यूपीएससी ने मतलब गवर्नमेंट ने हटाया है, कुछ सीरियस तो ऐसे नहीं हटाते सर्विस वाले को.
Exactly.
या जिसको मोटे डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर हटाए गए हैं तो वो बाद में कोर्ट से रिस्टोर हो जाते हैं. सीरियस ग्राउंड होगा या सीरियस नहीं भी होगा उनके बारे में हम नहीं बता सकते.
एग्जैक्टली. क्योंकि ये तो दो केस अभी चर्चा में आ रहे हैं. आप इस सर्विस में बहुत सालों से हैं, क्या आपने कभी ऐसे केसेस पहले भी सुने कि यूपीएससी में इस तरह से सर्टिफिकेट्स का गलत इस्तेमाल करके लोग आईएएस की नौकरी पा रहे हैं? क्या सिस्टम में जो और भी अगर ऐसे लोग हैं कैसे पकड़े जाएंगे सर?
देखिए, हमने नहीं सुना था और हमारे समय में इस तरह का नहीं होता था कि सर्टिफिकेट लेते हैं. बहुत ही स्ट्रिक्ट था और लोगों में भय था. इसके बाद जो रिलैक्सेशन हुआ, रिलैक्सेशन में जो है सो मेरिट से कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ओबीसी क्राइटेरिया है या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, तो कहते हैं कि रिलैक्सेशन है जो डिस्क्राइब्ड सेक्शन है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, और दैट वाज ए टेम्पररी स्टेज, अस्थाई है. लेकिन मेरिट से कम्प्रोमाइज या एलिजिबिलिटी से कम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर सर्टिफिकेट नकली है, अगर विकलांगता का जो आधार है वो नकली है, अगर क्राइटेरिया सब्जेक्टिव है तो मिसयूज होगा, वो देखना पड़ेगा, उसको कमीशन को देखने की जरूरत है. इस तरह का ब्लेम अगर यूपीएससी द्वारा उस पर लगा है, अगर नहीं है, प्योरली मेडिकल है, तो फिर डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा. क्योंकि जितना भी कोई भी क्राइटेरिया हो उसको यूपीएससी में मेंस के बाद जब मेडिकल के लिए बुलाया जाता है उस समय सारे चीज देखा जाता है और जो दूसरे डॉक्टर की टीम होती है वेरी एबल डॉक्टर्स फ्रॉम एम्स फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल फ्रॉम रामन हॉस्पिटल नॉर्मली जो है सो इसी हॉस्पिटल का देखता है मेरे हिसाब से उसको डिटेल में जरूरत है
और यानी कि यूपीएससी को डेटा रिलीज करने की जरूरत है
यूपीएससी को डेटा रिलीज करने की जरूरत है और आप यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनको उनसे मांग सकते हैं उनका इंटरव्यू दे सकते हैं कि कैसा है मेरे समझ से वही
बिल्कुल। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे इस तरह से जो गड़बड़ियां पता लगती हैं ये किस तरह से प्रभाव डालती है एक स्टूडेंट पर जो एक आईएएस आईआरएस आईपीएस बनने का ख्वाब देखता है और यूपीएससी की छवि पर किस तरह से एक डेंट डालती है।
बड़ा ही निराशाजनक है ट्रूथ है जो सिविल सर्विस को एक आइडियल उसके रूप में देखता है। देखिए जो आम जनता है उसमें अभी भी यूपीएससी सिविल सर्विस वालों की छवि दूसरी है। एक शिव खेरा का बड़ा ही फेमस कोटेशन है कि अगर आपको अपने बच्चों का गार्जियन बनाना हो अपनी बेटी का गार्जियन बनाना हो या बेटे का तो आप एक लीडर को बनाने में पॉलिटिकल लीडर जो आजकल के है उसमें 10 बार खींच गए। शिव खेरा ने कहा था कि आप बना सकते हैं आप नहीं बनाएंगे आप रुक जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर मेरा कहना है कि जो आम धारणा है कि अगर सिविल सर्वेंट लोकल गार्जियन होता है या उसके गार्जियन देता है तो लोग देते हैं उनको पता है कि वो इंटीग्रिटी और उससे एक सीमा से नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो जब यूपीएससी का सिविल सर्विस का इतनी अच्छी छवि है तो उसमें इस तरह के कंप्रोमाइज किए हुए कैंडिडेट का घुसना जो है चिंता का विषय है और यूपीएससी की जो इंटीग्रिटी है उसका जो सोशल रिप्यूटेशन है उसकी जो नेशनल और इंटरनेशनल छवि है उस पर डेंट है और गवर्नमेंट को जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए इसके लिए।
एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।